पिछले चंद दिनों से किल्लते मनाम पे गुफ्तगू हो रही है, तो मशायख के बताए हुए इस्लाह का जो नुस्खा है, जो तमाम मशायख तमाम सिलसिले के मशायख के यहाँ मोतबर है, कि जो भी सालिकीन आए उनको चार चीजों में कमी करने की तरतीब और तरबियत दी जाए। किल्लते ताम, किल्लते कलाम, किल्लते मनाम और किल्लते इख्तिलात माल अनाम, यानी खाने पीने में कमी करना, गुफ्तगू में कमी करना, सोने में थोड़ी कमी करना, लोगों से बेलजोल में कमी करना। तो ये चार चीजें मशायख ने बताई जो भी सालिकीन इस्लाह के लिए आते हैं, इनको करवाई जाएंगी तो इनकी इस्लाह बेहतर तरीके से होगी। अगर सच्ची बात यह है कि अगर कुरान और हदीस को गौर से देखा जाए, ये चारों चीजें हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो पिछले चंद दिनों से किल्लते मनाम यानी नींद में कमी करने पे गुफ्तगू हो रही थी। इस हवाले से हमने अर्ज किया, नींद में कमी करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान उतनी कम नींद करे कि दिन में किसी काम के काबिल ना रहे। नींद में कमी से बेशतर मशायक की मुराद यही है कि नींद इतनी कंट्रोल में हो कि इंसान वक्त पे सोए, पहली चीज, और वक्त पे जागे, या नींद ऐसी ना हो कि उसे दीनी कामों से भी महरूम कर दे और दुनियावी कामों से भी महरूम कर दे। तो पिछली मजालिस में हमने ये भी अर्ज किया कि ज्यादा सोने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होता है जो सोता तो रात ही को है, ईशा के बाद या चलो 10-11-12 बजे तक सोने वाला, मगर उसकी आंख जो है वो खुलती उस वक्त है कि कई मरतबा फजर कजा, कई मरतबा वो अपने कामों से रह जाता है। तो ऐसा ज्यादा सोने वाला बुरा तो है मगर कम बुरा है, और एक ज्यादा सोने वाला वो है जो रात तो पूरी जागता है फिर टिका के लंबा सोता है, यानी दिन भर सोता है। और ऐसी भी मिसालें मिली हैं कि उसकी फजर कभी भी कजा नहीं होती मगर माशाल्लाह जोहर और असर कजा होती है। तो ये ज्यादा बुरा मरीज है इस नींद के मर्ज का। और हमने इस नींद के मर्ज का तذکرہ करते हुए फरमाया, जिस शख्स को ये लत लग जाए ज्यादा सोने की और रातों को जागने की, तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल है मगर उसके नुकसान तो बहुत ज्यादा है। और उस पर हमने डिटेल में गुफ्तगू की कि चार बड़े नुकसान हैं इस रात भर जागने के वाले के और फिर टिका के नींद करने वाले के। और एक नुकसान इसका सबसे पहला तो ये कि ये बंदा किसी काम के काबिल नहीं रहता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यूजलेस बम, यानी बिल्कुल जिसकी कोई वक्त नहीं कायम, इस माशरे में ये वैसा बंदा बन जाता है। और दूसरा ये कि ऐसे बंदे को फिर झूठ बहुत बोलना पड़ता है, क्योंकि काम काज का वक्त तो दिन का वक्त है। अब आप दिन में सो रहे हैं तो किसी को कह रहे हैं भाई मैं इस काम में मसरूफ, मैं उस काम में मसरूफ, असल काम जिसमें आप मसरूफ हैं वो नींद ही है। और तीसरा ये कि ऐसा बंदा करीबी रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ता है। यदि आपके कारोबार वाले तो आपको छेड़ना छोड़ देंगे, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी वाले भी आपको छोड़ देंगे, रिश्तेदारों ने कहाँ छोड़ना, उन्होंने तो फिर भी पकड़ना है कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो और हम आ रहे हैं। तो बंदा अपनी नींद की खातिर रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां भी खराब करता है ताकि ना वो हमसे पूछे ना हमें उनको बताना पड़े। और चौथा और सबसे बड़ा गुनाह इस मर्ज पे मुब्तिला शख्स के लिए, जो रात को जागता है और दिन भर सोता है, कि रात को जब जागता है और दुनिया सो रही होती है, तो आज के जमाने में ऐसा शख्स सिर्फ गुनाह ही कर रहा होता है। तो ये बड़े बड़े नुकसानात हैं, रात को जागने और दिन भर सोने वाला, तो वो भी बड़ा ज्यादा नींद जो करता है, जो रात को वक्त पे सोता है मगर सुबह देर से उठता है, मगर उससे ज्यादा बड़ा मरीज ये है नींद का, जो रातों को पूरी जागता है फिर दिन भर सोता है। कल की मजलिस में हमने अर्ज किया कि ये नींद जो है कंट्रोल की जाने वाली चीज है। इंसान जो है उसको नींद कंट्रोल करना ये इंसान के बस में, ये पॉसिबल टारगेट है। अरबों लोग वक्त पे सोते हैं, वक्त पे उठते हैं। अमेरिका की स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% अमेरिका शाम 6:30 बजे रात का खाना खा चुका होता है। 90% अमरीकी जो है वो रात 8:30 बजे से पहले पहले सो चुके होते हैं। तो हमसे ज्यादा सुन्नत अमल करने वाले तो वो हो गए, जल्दी सोना ही सुन्नत है ना। तो ये पॉसिबल टारगेट है, अचीवेबल टारगेट है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो इस मर्ज में मुबतला है उसका क्या हल है। भाई जो 10 बजे सो रहा है उसको आप खींच के कह सकते हैं कि भाई 9 बजे सो जाए, मगर 10 बजे सो रहा है इतनी हमारी आदत हो गई हम उसको कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी कि 10 बजे सो जाता है। मगर बड़े बड़े मुल्कों में, पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे चाइना में 10 बजे सोने वाला देर से सोने वाला है। तो अब मगर इस मर्ज में जो मुब्तला जो पूरी रात जागता है फिर पूरा दिन सोता है, उसका हल क्या है? तो उसका हल मशायख ने बताया कि रात का जो ये जागना है इस जागने में इबादत को जगाया जाए। इस रात के वक्त में जहां फोन पे फोन देखे जा रहे हैं उसको छोड़ के अगर ये वक्त इबादत में लगाएंगे उसके दो फायदे हो। एक तो ये जो रात के वक्त में इंसान गुनाह करता है उसकी जगह कुछ नेकी वाला काम करते, और ये थोड़ी नेकी नहीं है कि वो वक्त होते हैं रात के औकात के। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुआएं कबूल करने के लिए तैयार। तो इंसान जागा हुआ भी होता है, एक्टिव भी होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी पुकार रहे होते हैं, बस मसला ये होता है कि वो फोन पे बैठा हुआ होता है। तो रात के इस मर्ज में रात को जागने और दिन को सोने वाले मर्ज में मुब्तला शख्स का हल जो है वो ये है कि उस रात के जागने वाले औकात में इबादत शुरू करे। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि इबादत के अंदर अल्लाह की याद के अंदर सुकून है। ये जो रात की बेदारी है ना ये कम हो जाएगी, नींद आ ही जाएगी। गुनाह के अंदर बेसुकूनी, गुनाह इंसान को जगाता है, इबादत के अंदर सुकून। तो वही शख्स जो पूरी रात जाग रहा था ना कि भाई नींद ही नहीं आती, आप उसको कहें नवाफिल पढ़ना शुरू कर, तस्बीह पढ़ना शुरू कर, अब शिकायत करेगा यार आंख निकल, नींद आ जाती है, सो जा। अगर इससे बढ़ के फायदा ये होता है कि इबादत करने वाला शख्स जो है उसके दिल की गफलत दूर होती है, थोड़ी नींद पे भी उसका गुजारा हो जाता है। हमारे मुल्क की एयरलाइन PIA के डायरेक्टर साहब के बेटे ने ये वाकया खुद इस आजिश को सुनाया कि जी वालिद मेरे नेक डायरेक्टर साहब नेक आदमी, अब तो रिटायर हो गए, ये तो मेरे वालिद साहब नेक, मैंने जब A-levels मुकम्मल किया तो मैंने वालिद साहब को कहा था कि मैंने बाहर अमेरिका पढ़ने के लिए जाना है, अल्लाह ने वालिद साहब को माल पैसा दिया था, ठीक है तो अमेरिका चले जा, मगर उन्होंने मुझे डायरेक्शंस दिए कि तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा, इस तरह से नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, ये सारी चीजें कह के डायरेक्टर साहब को ये नहीं पता था कि ये अल्फाज इतने काम नहीं करते कि तू ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, यहाँ सैलाब हो गुनाह का। और डायरेक्टर साहब को पूरी उम्मीद थी, कहते मेरे वालिद को पूरी उम्मीद थी कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। कहते साल पहला मैं गया और पूरा साल मुकम्मल करके जब गर्मियों की छुट्टी आई तो मैंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ। वालिद पी आई ए के डायरेक्टर से, मैंने कहा जो मेरे तीन चार दोस्त हैं स्पेनिश हैं अमरीकी हैं ये भी मेरे साथ आ रहे हैं, ये बलूचिस्तान देखना चाहते हैं। डायरेक्टर साहब ने कहा ले आओ, उनको भी ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे दोस्त ही हैं ना। तो चंद दोस्त उसके अमरीकी जो है वो उसके साथ कराची आए। वाले साहब ने कहा कि ठीक है तुम्हारी कराची से क्वेटा की तुम सबकी टिकटें करवा देता हूँ। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं वी डोंट वांट टू गो इन प्लेन, वी वांट टू ड्राइव, ड्राइव करके यहाँ से जाएंगे क्वेटा। वाले साहब ने फिर दो गाड़ियों का इंतजाम किया क्योंकि यहाँ से क्वेटा ड्राइव करना सिक्योरिटी का मामला भी था, फिर अमरीकी बच्चे थे तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी साथ कर दिया, और वालिद का जो डायरेक्टर साहब का जो खास ड्राइवर था ना उसको भी साथ कर दिया कि जी बच्चों पे नजर रखना कोई तो मसला हो तो मेरे बताओ। ड्राइव करके कराची से क्वेटा गए, कराची से क्वेटा 8-10-12 घंटे में पहुंच गए। अगले दिन सुबह वालिद साहब का जो खास ड्राइवर था उसका फोन आया कि जी रात को ये अमरीकी बच्चे शराब पी रहे थे और आपका बेटा भी माशाल्लाह साथ पी रहा था। वालिद साहब के तो पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई, वो सोच ही नहीं सकते थे कि अच्छा मेरा बेटा शराब पी रहा। फिर सच्ची बात यह कि जो उस माहौल से वाकिफ है उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वहां नियतें करना सिर्फ काम नहीं करता है, कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे तो बच सकते हैं। कितनी दुनिया वहां से वापस इसलिए आती है कि हम अपने बच्चे को शराबी जानी ड्रगी नहीं बनाना चाहते हैं। तो वालिद साहब तो हो उनको उस वक्त दिमाग जो है ना उनका बिल्कुल गर्म हो गया कि मेरा बेटा, और फिर उनको एहसास हुआ कि जी इस चीज से तो कोई बच ही नहीं सकता जब वहां यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा बगैर किसी सुपरविजन के, यानी कोई है ही नहीं, कोई बड़ा ही नहीं है, जिस माहौल में हर बुरी चीज अच्छी समझी जाती है। तो पूरा दिन वाले साहब सोचते रहे समझते रहे करते रहे, दोपहर शाम तक वाले साहब ने कहा कि बस इस बच्चे को निकाल के मैंने किसी अच्छे माहौल में डाला, मतलब बुरे माहौल अमेरिका भेज दिया उसको। वाले साहब ने फोन किया कि परसों सुबह तेरी मेरी और तेरी वालदा की हमारी उम्रे की टिकट है, तो वापस कराची पहुंच, आज रात की फ्लाइट से पहुंच वापस। उसने कहा ये सारे दोस्त आए हुए हैं अमरीकी, आपने अचानक प्लान बना लिया है तो आप और अम्मी चले जाए, मैं फिर बाद में करता। उसने कहा इस फ्लाइट से पहले पहले अगर तू पहुंचता है तो तू मेरे घर में आ जाना, वरना तू मेरे घर में आना नहीं। बड़ा सख्त मौके और देना जरूरी था। उसको भी समझ में आ गई कि वाले साहब मानेंगे नहीं, एक ही फ्लाइट थी जाने वाली। पहुंचा तो वाकया तन फ्लाइट पे जगह नहीं थी, इधर से उधर भाग रहा है उधर से इधर भाग रहा है। उसको पता था कि वाकई तन मैं अगर कराची पहुंचूंगा इस फ्लाइट के बाद, यानी उम्रे की फ्लाइट अगर निकल जाएगी, मेरे वालिद ने जिनको पता चल गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ उसने मुझे घर में नहीं ठहरना, उसने मुझे अमेरिका नहीं भेजना, उसने मुझे कुछ नहीं करना। अब वो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, पीआई के डायरेक्टर का बेटा पीआई की फ्लाइट में बैठने के लिए तो सीट नहीं मिल रही है। प्लेन के कप्तान ने देखा कि जी डायरेक्टर साहब का बेटा इधर उधर भाग रहा है तो पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा जी उम्रे की फ्लाइट है कल सुबह और इस फ्लाइट पे सीट मिल नहीं रही है। वाले साहब कह रहे हर सूरत आओ। तो कप्तान साहब ने मालूम किया तो वाकई सीट बिल्कुल नहीं थी, कप्तान ने अपनी कॉकपिट में बिठा के उसको लेकर कराची आया कि जी कल सुबह। अब 1-1.5 रातों से सोया नहीं था, और इस आगे वाली रात में नहीं सोना था, फजर के बाद फ्लाइट थी उमरे की, तो 2 रातों से सोया नहीं है, और एहराम बांध कर वालदैन के साथ बैठ गया कराची से जिद्दा की फ्लाइट में। बड़ा उसने शुक्र अदा किया कि शुक्र है, वरना वाले साहब ने हंगामा कर देना। फ्लाइट में, खैर मैं फ्लाइट में ये सोच रहा था कि जैसे ये दोनों उम्रे के लिए जाएंगे ना, तवाफ शवाफ शुरू करेंगे, मैं पीछे से होटल में आके आराम कर लू, मैंने कौन सा उम्रा कर। पर कहते हैं कि मैं अंदर गया हरम में, माहौल ऐसा था कि मैं अपने आप को बाहर निकाल ना सका। मैंने तवाफ भी मुकम्मल किया, सही भी मुकम्मल किया, उमरा। तो कहता है कि मैं 10 दिन वहां मक्का में रहे, 10 दिन में सुबह दोपहर शाम इबादत में ऐसा मशगूल माहौल ही ऐसा था कि मैं सोच नहीं सकता कि मैं इतनी इबादत कर सकूंगा। मगर उसने कहा सबसे हैरान कुन बात यह है कि रात को एक एक दो दो घंटे भी सो जाता तो नींद की जरूरत मुझे कोई नहीं थी। तो ये पक्की बात है, जब इंसान इबादत करता है तो थोड़ी नींद पे भी गुजारा हो जाता। तो इसका हल यही है, जो रातों को जागने की बीमारी में मुब्तला और फिर दिन के सोने की बीमारी में मुब्तला, कि वो अब रातों को जागने वाला वक्त जो है वो नवाफिल में, दुआओं में, तस्बीहात में, इबादत में गुजारे। अल्लाह ताला इस नींद के मर्ज से हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا رب. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله
عليكم ورحمة
وبركاته.
الله وبركاته.
ترجمة